ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के अति लाडले बच्चे हो। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा हक दिया है, लेकिन फिर भी बच्चे अधिकार लेने में, हक लेने में नंबरवार हो जाते हैं। मिसाल दिया जाता है कि सूरज तो सबको समान धूप देता है, लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। सागर सबको समान जल देता है, लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। फूलों के बगीचे में जो जाने वाले होते हैं वो फूलों की सुगंध के समान अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो देने वाले नंबरवार नहीं हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। इसी प्रकार हम बाबा के लिए भी यही कहते हैं, बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का दाता है, हर बात में वो भरपूर है और समान रूप से बच्चों को सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो क्यों ये नंबरवार होते हैं, आज हम उस पर थोड़ा सोचेंगे। हम सभी अपने आप को राजयोगी कहलाते हैं, सभी कहलाते हैं ना, हर एक क्या समझेगा, क्या कहता है, मैं कौन हूँ? आत्मा तो हूँ, योगी भी हूँ, पर राजयोगी भी हूँ। योगी तो सारी दुनिया है, जिसके साथ संबंध है, जिससे प्यार है, उसके साथ योग है, तो योगी तो सभी हैं, लेकिन राजयोगी हम बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा से संबंध है, परमात्मा से हमारा प्यार है, परमात्मा से ही हम लेते हैं, यही कहते हैं ना, हम हमारे सब संबंध परमात्मा के साथ है, वही हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन बच्चा भी सब कुछ वही है। पहले हम उन पर वारी जाते हैं, फिर वो हम पर 21 जन्मों के लिए वारी जाते हैं। बहुत गर्व से हम ये बातें कहते हैं, और वो बाप देने के लिए खुली बाहें पसार कर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। तो किस बात में नंबर आ जाता है? पहली बात तो हमारी सोच में, हमारी सोच में नंबर आ जाता है, हमारी समझ में नंबर आ जाता है, हमारे कर्मों में नंबर आ जाता है, हमारे पुरुषार्थ में नंबर आ जाता है, उसमें अंतर पड़ जाता है, और उसी अंतर के कारण हम सब नंबरवार बन जाते हैं। तो राजयोगी के कैसे कैसे स्वरूप होते हैं, वैसे तो राजयोग का स्वरूप तो बाबा ने बता दिया है, हम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बनते हैं, हम बच्चे ही ये पांच स्वरूपों में आते हैं। लेकिन जो अभी का विषय है हमारा राजयोगी के विभिन्न स्वरूप, सब शिव बाबा को ही याद करते हैं। हम सब ने परमात्मा को पहचान लिया है, परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है और उनको ही हमें याद करना है, ये भी हमें पक्का निश्चय है। उनसे ही सर्व प्राप्ति हमें करनी है, इसमें भी पूरा निश्चय है। लेकिन फिर भी नंबरवार बन जाते हैं क्योंकि अलग अलग सोच, अलग अलग समझ, अलग अलग हमारी धारणा, हमारे कर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें भी किसी का दोष नहीं है कि अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसलिए सब कुछ अलग हो जाता है। और वैसे भी बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो एक ही महाराजा महारानी होंगे, एक गद्दी पर दो तो नहीं बैठ सकेंगे, एक ही वो पद होगा। तो जितने भी पद होंगे उस पर एक ही बैठ सकेगा, उस पद के लिए वो ही योग्य होगा। और अनेक प्रकार के पद हैं, महाराजा से लेकर के दास दासी तक। जो आज बाबा ने कहा कि सतयुग की प्रजा, फिर त्रेता की प्रजा, फिर सतयुग के राजा के दास दासियां, प्रजा की दास दासियां, त्रेता की भी प्रजा और उनकी भी दास दासियां, तो कितना स्टेटस है, कितने पद हैं। और इतने सारे पद अगर है, माना हर एक की स्थिति भी अपनी अपनी होगी, और हर एक की स्थिति अपनी अपनी होगी क्योंकि सोच अलग है, समझ अलग है, सब कुछ अलग है, पार्ट अलग है। तो जब ये बातें हम समझते हैं तो कई भाई बहने इसका उल्टा एडवांटेज लेते हैं, जैसे ड्रामा से भी उल्टा एडवांटेज लेते हैं ना, उल्टा समझते हैं। जब बाबा कहते हैं कि नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इस ड्रामा के अंदर, कल्प पहले भी जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है, तो कई बच्चे उनको उल्टा कैसे समझ लेते हैं कि ठीक है जो कल्प पहले हुआ था वही होना है, तो अगर कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा तो करेंगे, नहीं किया होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि कल्प पहले अनुसार ही अभी होना है, तो अपने आप हो जाएगा अगर कल्प पहले किया है तो। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा को उल्टा मत लो। क्यों ड्रामा को उल्टा लेते हैं? क्योंकि ड्रामा को इस रूप से समझते कि वही कराएगा, हमें कुछ नहीं करना है। पर ड्रामा के अंदर ये भी नोंद है कि हमें ही करना है, भले कहेंगे ड्रामा अनुसार हमें करना है, लेकिन करना तो हमें है ना। प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ के नहीं होगी, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ बाद में और प्रारब्ध पहले, पहले पुरुषार्थ है, भाग्य प्रारब्ध बाद में है, इसलिए पहला कदम तो पुरुषार्थ का है, फिर उसके बाद प्रारब्ध है। तो इसीलिए कर्म के बाद ही वो फल है, बिना कर्म के फल नहीं है। भले कहने में आएगा कि बीज है तो फल है, फल है तो बीज है, दोनों साथ में है, कई पूछते ना पहले बीज या पहले झाड़, तो कहेंगे दोनों चाहिए, बीज हो और झाड़ न हो तो भी ठीक, तो भी नहीं होगा, झाड़ हो और बीज न हो ये भी नहीं होगा, बीज भी चाहिए झाड़ भी चाहिए, दोनों चाहिए। इसलिए जब दोनों ही है पर फिर भी दोनों में से पहले किसको रखेंगे, पुरुषार्थ को रखेंगे या प्रारब्ध को रखेंगे, कर्म को रखेंगे या भाग्य को रखेंगे, किसको रखेंगे? हाँ, कर्म को रखेंगे। तो जैसे इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं तो उसी प्रकार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कह करके हम कमजोर न बन जाएं कि क्या करे है ये सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे, सब थोड़ी ये बनेंगे, सब थोड़ी बनेंगे, सब थोड़ी माला में आएंगे, तो सब नहीं आएंगे ये पता है, लेकिन पता होते हुए भी हमको क्या करना है। अगर कोई विद्यार्थी कहे सब तो पहला नंबर नहीं लेंगे, पता है सब पहला नंबर तो नहीं लेंगे, लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होगा उसका लक्ष्य तो यही होगा ना कि मैं ही पहला नंबर लूं, भले पता है सब नहीं लेंगे, परंतु मैं पहला नंबर लूं ये लक्ष्य जरूर होगा। और अगर ये लक्ष्य नहीं है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कई लोग जब ड्रामा की पॉइंट की पर आते हैं तो फिर इसमें दूसरा प्रश्न आता है कि ड्रामा समझ करके बस हमको संतोष करना है, जो है सब अच्छा है, सब कल्याणकारी है, तो हम पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? संतोष का मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थी नहीं है, संतोष धारण करना ये अच्छी बात है, जो है उसमें संतुष्ट रहो ये बहुत सुंदर बात है, ताकि कहीं भी आंख न डूबे। लेकिन पुरुषार्थ तो हमारा सतत होना ही चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो संतोष और पुरुषार्थ हम इसमें मिला न दें, पुरुषार्थ अपने स्थान पर है, संतोष अब धारण करना वो अपने स्थान पर है। तो जब हम इस अंतर को समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है वो भी समझ में आ जाता है। हालांकि बाबा ने उस दिन मुरली में बहुत सुंदर बात कही कि बाबा के तो सब बच्चे सहयोगी आत्माएं हैं, कोई तन से सहयोगी, कोई मन से सहयोगी, कोई धन से सहयोगी, कोई संबंध संपर्क में, हर प्रकार से सहयोगी है। पांचों ही उंगलियों का सहयोग चाहिए, एक अकेली उंगली क्या करेगी? हाँ, भले जब जब हम ये हाथ खोलते हैं तो पांचों उंगलियों की साइज अलग अलग है, लेकिन जब इन पांचों को एक मुट्ठी बनाते हैं तो फिर ये सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, भले अलग अलग साइज है। इसी प्रकार सहयोग में हर एक अपना अपना सहयोग है, लेकिन जब मिल करके एक होते हैं तो सब एक बन जाते हैं, उसमें फिर अलग अलग नहीं है। जैसे एक मशीन के अंदर कितने पुर्जे होते हैं, हर एक पुर्जा अलग अलग है, लेकिन सब पुर्जों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है। पर ये भी नहीं कहेंगे कि ये पुर्जा तो बहुत छोटा है, इसके बिना चल सकता है, ये इसके बिना नहीं चल सकता, नहीं, छोटे की भी जरूरत है, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना स्थान है। तो जैसे उन बातों में हरेक का अपना पार्ट है, अपना स्थान है, अपना महत्व है, ये बेहद रूप में हम जानते हैं, इसलिए हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, इसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला। बाबा कहते हैं यहाँ आपको खुला भंडारा है, जितना चाहिए लो, लेकिन पुरुषार्थ आपको अपना करना पड़ेगा। बाबा दे रहा है, लेना आपको अपने पुरुषार्थ से होना है। तो अंतर पड़ गए और मैं उस अंतर को समझ करके सहयोगी भी बनूं, अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाऊं, किसी से भेंट भी नहीं करूं, कंपटीशन में भी नहीं आऊं। अगर मुझे कंपटीशन करनी भी है, प्रतियोगिता करते हैं ना, चटाबेटी होती है, कंपटीशन होती है, प्रतियोगिता होती है, तो हम किसी और से न करके अपने से ही करूं। अपने से कैसे करूंगी? कल मेरी स्थिति कैसी थी और आज मेरी स्थिति क्या कल से बेहतर है, कल से अच्छी है या कल से और भी गई गुजरी है? कल ये परिस्थिति आई थी तो मैं एकदम अडोल थी, स्थिर थी, एक रस थी, और आज उस प्रकार की परिस्थिति आई और मैं हलचल में आ गई, तो कल से तो मैं और नीचे पीछे चली गई। लेकिन कल से आज मेरी स्थिति और अच्छी होनी चाहिए। ये है अपने साथ चटाबेटी, अपने साथ कंपटीशन, अपने साथ भेंट करना, किसी दूसरे से भेंट नहीं करनी है। क्योंकि दूसरे से भेंट करेंगे तो या तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, या तो अभिमान आ जाएगा, या तो हीनता की भावना आ जाएगी। अभिमान भी आ सकता है, मैं इनसे अच्छी हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ। हीनता की भावना भी आ सकती है कि मैं तो इनकी तरह कर ही नहीं सकता हूँ। तो अभिमान भी ना आए, हीनता भी ना आए, मैं अपने स्वमान में भी स्थित रहूं और स्वमान में स्थित रह करके अपने आप को आगे बढ़ाऊं। और कहां तक पहुंचना है, बाबा ने उस दिन की अव्यक्त मुरली में कहा, सहयोगी तो सभी बच्चे हैं, लेकिन कोई है सहज योगी और कोई है प्रयोगी। तो मुझे प्रयोगी नहीं बनना है, पर सहज योगी बनना है। बस ये अंतर को हमें समझना होगा। सहज योगी का अर्थ होता है हर बात में वो सहज, हर बात में वो सरल, हर बात में वो फ्लेक्सिबल, हर बात में वो खुश, हर बात में अपने अंतर में संतुष्ट, हर परिस्थिति में अचल अडोल। उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर समझना चाहिए कि हम सहज योगी नहीं है। तो सहज योगी है या तो मेहनत के योगी है। और बाबा कहते हैं सहज योगी बनो। तो मेहनत के योगी या प्रयोगी कहो, वो सदा प्रयोग किस रूप में करता है, मैं पता नहीं हूं या नहीं हूं, ठीक है या नहीं है, अपनी बुद्धि अपने ढंग से चलाता है, अपनी सोच अपने मन अनुसार चलाता है, अपनी शक्ति अनुसार वो कर्म करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सदा असमंजस में है, सदा उसके अंदर में एक संशय है, पता नहीं ये ठीक किया या नहीं किया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, प्रयोगी आत्मा अपने आप से प्रयोग करेगा तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और अपने आप को समझाता भी रहेगा, मैं हूं, मैं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, मैं हूं। पर जो सहज योगी होगा, मैं हूं हूं नहीं सोचेगा, मैं ही हूं, वो अपने स्वमान में रहेगा। प्रयोगी मैं हूं, ये कभी हूं कभी नहीं हूं संशय आता रहेगा। और संशय क्यों आया, क्योंकि जितनी प्रीत बाबा से चाहिए वो प्रीत बुद्धि इतनी नहीं है, बुद्धि और कहां भी लटकी हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत बहुत जरूरी है, हर कदम कदम के लिए हमें श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई केवल मोटे रूप में नहीं मिलती है, जो चार पिलर्स हम बताते हैं ब्रह्मचर्य पालन या शुद्ध अन्न सत्संग दिव्य गुणों की धारणा, ये तो चार मोटे रूप में पिलर्स हैं। तो मोटे रूप से तो बाबा ने हमें चार धारणाएं बताई है, और उन चार धारणाओं के आधार पर हम ब्राह्मण बच्चे चलते हैं। लेकिन जो सुबह से लेकर के रात्रि तक की जो एक एक कर्म के लिए, एक एक वचन के लिए, एक एक सोच के लिए जो बाबा ने धारणाएं बताई है, उस पर हमारा कितना अटेंशन है, उसके आधार से हम प्रयोगी बनते हैं या सहज योगी बनते हैं। कई सहज योगी का अर्थ भी पूरा नहीं समझते हैं, कई समझते हैं सहज योगी माना अलबेले होना। अलबेला होना सहज योगी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। कई होते ना अलबेले हैं, उनको कुछ कहो कैसे क्यों ठीक है छोड़ो। तो अलबेलापन आया और समझ हम तो सहज योगी है, पर सहज योगी माना हर एक चीज एक्यूरेट भी हो, हर एक बात श्रीमत अनुसार भी हो, लेकिन हर एक बात कष्ट बिना भी हो, मेहनत से भी ना हो, उसको कहेंगे सहज योगी। और वो कैसे संभव होगा, जो बाबा कहते हैं कि अपने ओरिजिनल संस्कार को स्वाभाविक बनाओ। कई बच्चे सोचते ओरिजिनल स्वभाव तो हमारा स्वाभाविक कैसे बने, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि जो अभी के संस्कार स्वभाव है वही सहज लगते हैं और वो मुश्किल लगते हैं। तो फिर क्या कह देंगे, क्या करें मेरे पुराने संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कार ये नहीं है जो कलयुग के हैं, पुराने संस्कार तो सतयुग के हैं, वो आपके असली संस्कार हैं। तो वो असली संस्कार समझते हैं वो तो हाँ भूल ही गए हैं, लेकिन यही हमारे स्वाभाविक संस्कार है जो कलयुग के हैं। फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया फिर अपने आप को समझाना पड़ता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा लोभ आ गया समझाना पड़ता है मुझे लोभ नहीं रखना है, थोड़ी सी कुदृष्टि गई फिर समझाना पड़ता है मुझे कुदृष्टि नहीं रखनी है, मुझे आवेश में नहीं आना है, मुझे ये नहीं करना है, समझाना पड़ता है खुद को, वो मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते मेहनत के योगी। लेकिन सहज योगी माना जो मेहनत नहीं करनी पड़े, वही स्वभाव निकले, वही मेरा संस्कार बन जाए जो मेरा असली संस्कार हो। तो कई कहते इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, बाबा कहते मेहनत नहीं, सदा आप वो स्वरूप विमर्श करो। क्या मैं चलते फिरते देवता या चलते फिरते फरिश्ता बन सकता हूँ, अगर मैं अपने आप में यही अभ्यास करूँ मैं तो चलता फिरता फरिश्ता हूँ, मैं तो चलता फिरता देवता हूँ। वो तो देवताओं की मूर्ति दिखाते हैं, फरिश्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं, पर मैं ही वो हूँ। तो क्या वो भी कोई मेहनत करते होंगे फरिश्ता बनने में, उनके लिए तो कितना सहज होगा। क्या देवता को देवता ही संस्कार लाने में मेहनत करनी पड़ती होगी, नहीं, वो तो नेचुरल रूप में वो देवता ही संस्कार उनमें है। तो मैं भी वो फरिश्ता हूँ, मैं भी वो देवता हूँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ या नहीं हूँ ये असमंजस नहीं, ये संशय नहीं। अगर ये संशय है इसका मतलब अभी तक प्रयोग ही चल रहा है। तो कई कहते हैं बहन जी प्रयोग के बिना हम कैसे कंप्लीशन या परफेक्शन को प्राप्त करेंगे, पहले तो प्रयोगी है ना। अब बाबा कहते प्रयोगी नहीं बनना है, बस लक्ष्य मिला और हो गए, लक्ष्य मिला और समझ लिया हम ही हैं वो, केवल बनना नहीं है हम हैं ही, ये है सहज योग। हाँ पुरुषार्थ यहां तक है कि हमें ये समझना है कि मुझे बाप समान बनना है, ये पुरुषार्थ जरूर है। ये जरूर पुरुषार्थ है कि जो भी मैं सोचूं, जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं कर्म करूं, जो भी मैं व्यवहार करूं, वो बाप समान व्यवहार हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है कि मैं जो ये सोच रही हूं या ये सोच रहा हूं, अगर बाबा इस समय होता तो क्या यही सोच सोचता? बाबा के लिए कितना सहज हो गया। ब्रह्मा बाबा का अगर हम देखें कैसे एक धक से बाबा में परिवर्तन आ गया, एक धक से। क्या बाबा को मेहनत लगी होगी? बस पता चल गया मैं वही विष्णु हूँ, पता चल गया मैं वही सतयुगी प्रिंस हूँ, पता चल गया कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, पता चल गया कि ये सब कुछ शिव बाबा का है, एक सेकंड में परिवर्तन हो गया। सोचने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा को, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा को। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही पता चला कि मैं ही वो फरिश्ता बनना हूँ, मैं ही वो सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, तो बस जैसे उनको लगा मैं ही वो हूँ। कई बार बाबा बताते थे कि मैं सोचता हूँ कि क्या मैं हूँ या नहीं हूँ, फिर मैं सोचता हूँ हाँ मैं वही हूँ, तो फिर वही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। मैं हूँ या नहीं हूँ ये संस्कार भी नहीं रहे, वो बदल गए एकदम, मैं ही हूँ। भक्ति में तो कई कहते खुद खुदा हूँ। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो भी यही था सोच, इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं था, तो खुद खुदा हूँ मैं, खुद खुदा हूँ, समझ में कुछ नहीं आया। शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और शिव बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ये शिव बाबा बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है पता नहीं, खुद खुदा यही समझ लिया। ये तो बाद में धीरे धीरे कैसे जब शहजादियां आती थी या ध्यान में जाते थे और बाबा कहते वो आते थे शिव बाबा, उनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को बताते थे कि शिव बाबा आप में प्रवेश है, शिव बाबा ये बोल रहे हैं। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को तो बस नशा ही चढ़ गया, शुरू से ही नशा चढ़ गया, इसलिए एक धक से सब स्वाहा कर दिया और धक से स्वाहा करके आगे नहीं सोचा आगे क्या होगा, बस एक धक से और नष्टो मोह हो गए एक सेकेंड में। गीता में तो दिखाते अर्जुन को कितना मोह आया, 18 अध्याय सुनाने पड़े भगवान को उसका मोह नष्ट करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को मोह नष्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगा, बस लक्ष्य मिल गया, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो चुकी थी। भक्ति का ही तो फल था ना ज्ञान, वो 63 जन्मों की पूरी भक्ति हो चुकी थी, इसलिए पहला भक्त भी वही था द्वापर युग से, और उसके बाद शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया तो कैसे अपना माध्यम बना करके एक दक से सब स्वाहा करा लिया। फिर भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं ही वो संपूर्ण हूँ, बाबा हमेशा बच्चों को देखते थे, बच्चों की खातिर। कई बार साकार मुरलियों में आप देखेंगे बाबा अपना पुरुषार्थ बताते हैं, मैं भोजन करने बैठता हूँ, उस दिन भी बाबा की मुरली में आया, मैं तो बाबा की वन्नी हूँ, वन्नी माना पत्नी हूँ, तो पत्नी अपने पति के बिना खाएगी क्या? अपने पति के बिना तो नहीं खाएगी, तो नहीं कि पति अभी तक खाया नहीं पत्नी खा लेगी। आजकल कलयुग में तो सब करते हैं, हा? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तो ये नहीं था। तो मैं तो शिव बाबा की बनी हूँ, शिव बाबा के बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? बिना शिव बाबा की याद के मैं खा नहीं सकता हूँ। तो ये बाबा अपने साथ प्रैक्टिस करते थे, शिव बाबा के साथ ही खाना। फिर बाबा कहते थे, फिर कुछ न कोई बात आती थी, फिर भूल जाता हूँ। मैं शिव बाबा के रथ को स्नान करा रहा हूँ, शिव बाबा याद आएगा, फिर भूल जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। फिर बाबा कई बार कहते थे कि कोई तूफान आता है तो पहले इंजन को तूफान लगता है, फिर डब्बों को लगता है। तो ये तूफान तो बच्चे पहले मेरे पास आएंगे, तुम तो डब्बे हो, ये इंजन तो ये है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सचमुच बाबा के आगे तूफान आते होंगे क्या? बाबा तो कैसे अचल अडोल स्थिति में थे, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन एक धक से जैसे बाबा स्वाहा हुए, झाटको हुए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्या होगा कैसा होगा नहीं मुड़ के देखा। परंतु अगर मुरलियों में ये आता है अब उनके पुरुषार्थ की बात, ये इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है ताकि बच्चे फंक न हो जाएं कि मेहनत करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। साकार में बाबा यहाँ तक कहते थे, बच्चे अगर संकल्प में कोई ऐसा अशुद्ध विचार आता है मन में, कोई बात नहीं, कर्म में मत लाओ, कर्म में मत लाओ। ये सब साकार की मुरलियां थी ताकि बच्चे फंक न हो जाए कि हमसे पुरुषार्थ नहीं होता है। परंतु बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया? क्योंकि उनका टारगेट बिल्कुल निश्चित था, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं श्री कृष्ण की सोल हूँ, मैं शिव बाबा का ये लॉन्ग बूट हूँ, ये जो भी बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अंदर जितने भी स्वमान थे वो बहुत ऊंची स्थिति के थे। इसीलिए बाबा को कोई मेहनत लगी होगी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते, और देखते भी थे बाबा को। चाहे कितनी भी बातें बाबा के सामने आई, साकार बाबा को हमने बहुत नजदीक से देखा है, और कैसे बाबा सुनते हुए जैसे अचल अडोल स्थिति होती थी, सुन रहे हैं, क्या क्या कलंक लगते थे, लेकिन बाबा कैसे अचल अडोल, जरा भी चिंता की रेखाएं या गुस्से की रेखाएं बाबा के चेहरे पर कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। जैसे बाबा नहीं कहते मक्खन से बाल, ऐसे अनुभव होता था बाबा से, जैसे कि उनके आगे कुछ भी आया जैसे था ही नहीं। हम लोगों को जरा भी किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, तुरंत महसूस हो सकता है, पर ये स्थिति बाबा की ऐसे नहीं कि कोई अज्ञान काल में होगी। तभी तो बाबा कहते हैं ना, शुरू में जब बाबा साकार में ज्ञान से पहले बहुत पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि शिव बाबा को उनकी आत्मा को तैयार करना था, और वो तैयार आत्मा थी तब शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो भक्ति मार्ग में बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसलिए 12 गुरु किए बाबा ने, जीवन में 12 गुरु किए। ज्ञान नहीं था, शास्त्र बहुत पढ़ डाले थे, दान पुण्य बहुत करता था, अपने मन को समझाता रहता था। बाबा की एक डायरी है जो 1932 की डायरी है, जिसमें बाबा अपने मन से बात कर रहा है कि हे मन, तुम कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं अपने इष्ट में मन लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। बहुत बाबा अपने मन से बात करते रहते थे। बाबा अपने आप को चमाट भी मारते थे, थप्पड़ मारते थे, बाबा चूटी लगाते थे अपने आप को, हे मन तुम कहाँ दौड़ रहे हो। ये बाबा करते थे साकार में जब ज्ञान नहीं था, क्योंकि शिव बाबा को उनको तैयार करना था। तो जैसे शिव बाबा ने उनको सचमुच तैयार किया, क्योंकि उसके बाद 1936 में जैसे बाबा को एकदम वैराग आ गया, पहले से ही वैराग आ गया, 60 वर्ष की आयु हुई बाबा की और एकदम वैराग आने लगा। बाबा को वो हीरे जैसे पत्थर दिखाई देने लगे, अभी तक प्रवेशता हुई नहीं थी, तो जैसे शिव बाबा ने बाबा को पहले से तैयार कर दिया था, इसलिए जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई बाबा की अचल अडोल स्थिति बन गई। पर बच्चों के खातिर बाबा पुरुषार्थ की बातें अपने ही बताते थे ताकि बच्चे फंक न हो जाए, वो बाबा में हमने देखा। लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा की हम उंगलियां सुनते हैं तो बाबा तो यहां तक हमें ऊंचा ले जाते हैं, बच्चे संकल्प में भी ना आए, कर्म में केवल ना आए नहीं, संकल्प में भी ना आए। संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आए, क्योंकि स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं होते, संकल्प तो फिर भी हमारे कंट्रोल में होते हैं। पर स्वप्न भी में भी तब नहीं आएगा जब संकल्प में नहीं आएगा, वाणी कर्म या व्यवहार में नहीं आएगा, तो स्वप्न में भी क्यों आएगा। दिनचर्या के अनुसार स्वप्न भी वैसे ही आते हैं, तो स्वप्न में भी न आए उसके लिए कितनी ऊंची हमारी स्थिति हो, और वो स्थिति स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा। जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर सचमुच वो सीरियस स्टूडेंट है, वो उसको पढ़ाई का बहुत शौक है, उसको नंबर वन आना है, उसको और कुछ भी नहीं सूझेगा, बस केवल एक पढ़ाई ही सूझेगी और कुछ भी नहीं सूझेगा। तो सहज योगी माना जो बाबा हमसे चाहते वो सहज रूप से हम कर सके, मेहनत नहीं करनी पड़े हमें। अगर मेहनत कर रहे माना अभी तक प्रयोगी है, और प्रयोगी की रिजल्ट क्या होगी, क्या पद पाएंगे, आज ऊंचे हैं कल नीचे हो गए, आज बहुत खुश हैं कल देखो तो नाराज हो गए, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और कल देखो तो मुरझा गए हैं। जिसको बाबा कई बार कहते छुई मुई का पेड़ होता, छोटे छोटे होते पत्ते, उनके पेड़ भी जरा सा हाथ लगा एकदम झुक जाते हैं, छुई मुई, टच मी नॉट उसको कहते हैं। तो अगर हमारी स्थिति इस प्रकार की होगी तो वो स्थिति के अनुसार क्या पद पाएंगे हम, ऊंच पद तो नहीं पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए तो बहुत मजबूत चाहिए। आप सोचो लक्ष्मी और नारायण सारे विश्व के महाराजा महारानी होंगे, क्या ऊंची उनकी आत्मा होगी, कितनी शक्तिशाली उनकी आत्मा होगी। किसी ने कहा सतयुग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत शक्तिशाली चाहिए, वो तो जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम्स ही नहीं है। प्रॉब्लम्स हो तब समझेंगे कि शक्तिशाली है, ऐसी बात नहीं है। शक्तिशाली माना इतने अचल अडोल कि कुछ भी बात मेरे सामने आ भी गई वो बात मुझे स्पर्श भी नहीं करे, जिसको बाबा कहते हैं अचल अडोल अवस्था। कोई हिलाने की कोशिश भी करे लेकिन हम हिले नहीं। एक गुड़िया देखिए ना आपने, एक गुड़िया देखी होगी जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, नीचे भारी होती है और ऊपर पतली होती है, वो गुड़िया होती है, उसको हिलाओ कितना भी हिलाओ फिर वापस वहीं स्थिर हो जाएगी। और दूसरा होता है जैसे बेपेंदी का लोटा, अब उसके नीचे पेंदी नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, अगर जरा सा किया तुरंत लुढ़क गया, तुरंत गिर गया, क्योंकि उसका बेस ही नहीं है। तो बाबा कहते हमारा बेस इतना स्ट्रांग हो जो कोई हिलाने की कोशिश करे तो भी हिला न सके। संग के रंग में क्यों आ जाते हैं हम, किसी ने कुछ कह दिया सोचना शुरू कर देते, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तो बाबा कहते पता नहीं का तो पता ही कट जाएगा, पता कट जाएगा, माया के वशीभूत हो जाएंगे, क्योंकि माया तो देखती रहती है। इसलिए बाबा माया के बारे में हर मुरली में जरूर कहते हैं कैसे माया पछाड़ती है, हर रूप से माया पछाड़ती है। बाबा ने कई शब्द दिए कैसे पछाड़ती है। बाबा कहते कई बार माया क्या करती है, नाक से पकड़ती है, कभी कभी माया कान से पकड़ती है, कभी माया चोटी से पकड़ती है, कभी माया थप्पड़ लगाती है, कभी माया खोंशा मारती है, घूसा मारती है, कभी माया गिरा देती है, कभी माया बेहोश कर देती है, और कभी तो माया एकदम मार भी डालती है। अब ये कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि माया का अटैक हुआ? नाक से पकड़ती है तो क्या होता है, अगर किसी का नाक आप पकड़े तो क्या होता है? मालूम है ना क्या होता है, नाक को अगर मेरा नाक कोई पकड़े तो क्या होता है, सफोकेशन, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना, नाक कोई पकड़ ले तो मुश्किल होता है ना सांस लेना, क्योंकि नाक से ही सांस लेते हैं। तो माया नाक से पकड़ती है, माना ज्ञान में मूंझ जाते हैं, मूंझ गए ड्रामा के लिए, बाबा ऐसे कहते ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, माना माया ने नाक से पकड़ लिया है, ये समझ लो। अगर ज्ञान में थोड़ा भी संशय उठा, ये माया ने नाक से पकड़ा है। निश्चय बुद्धि विजयंती, माना ये कौन मुझे ज्ञान दे रहा है, सत्य बाप दे रहा है, जो सच खंड स्थापन कर रहा है, सत्य युग बना रहा है, वो सच्चा पातशाह, वो सत्य बाप जो एक है, जिसको सर्व आत्माएं याद कर रही है, वो मुझे ये ज्ञान दे रहा है। ये इतना पक्का निश्चय हो जो कोई भी बात हमें हिला न सके, कोई ज्ञान की पॉइंट में हम संशय न लाएं। हाँ ये जरूर बाबा कहते हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स की गहराई में जाओ, गहराई में जाना अलग बात है, पर दूसरा ज्ञान की बातों में फिर सोचते सोचते संशय बुद्धि बन जाना, ये ऐसे जैसे जंगल में चले जाना। अब जंगल में तो शेर मिलेंगे, चीते मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, यही मिलेंगे, फिर डर जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि आत्मा, माना शिव बाबा में पूरा निश्चय, तो ज्ञान में कोई संशय नहीं। माया नाक से पकड़ती, माना ज्ञान में संशय आना शुरू हो जाता। फिर कान से पकड़ती है, तो कान से पकड़ती है कैसे पता चलता है, किसी ने मेरे लिए कुछ कहा, कान खड़े हो गए, क्या कहा मेरे लिए, क्या समझता है वो, क्यों कहा, मैंने क्या किया, ये क्या क्यों में चले जाते हैं, ये कान खड़े हो गए, किसी ने कुछ कह दिया मेरे बारे में तो। इसलिए बाबा कहते ना, जिसको अभिमान होता है ना, उसको अपमान भी बहुत जल्दी लगता है, अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी लगता है, पर अगर आत्मा को अपना स्वमान है तो चाहे कुछ भी कहे उसको बाबा कभी नहीं महसूस होगा। उसको ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं लगा, क्या नहीं कलंक लगाए ब्रह्मा बाबा के ऊपर, पता है ना, जब शुरू में बहने बाबा के पास आई, समर्पित हो गई, यहाँ स्वाहा हो गई, तो क्या कलंक लगे, क्योंकि बाबा से साक्षात्कार होते थे, श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, तो क्या लोगों ने कलंक लगाए कि ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है, इसको 200-300 रानियां मिली है, अब ये कहता है मैं तो कृष्ण हूँ, मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए। हाँ ये सब 200-400 ही केवल मिली है इसको, 16,000 इसको रानियां चाहिए, अब कहाँ कलंक। देखो कृष्ण को कलंक तो इसी प्रकार के ही लगे, हालांकि बाबा कहते कृष्ण को तो कलंक लग ही नहीं सकते हैं, सत्युग में कौन कलंक लगाएगा श्री कृष्ण को। चीर हरण किया, ये भी कितना ये जो चीर चुराए, भाई गोपियों के वस्त्र चुराए, कितना बड़ा कलंक है ये कृष्ण पर, और बाबा कहते ये तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा कैसे सबको शरीर ही बना दिया, ये देह है वो देह ही भूल गई आत्मा, ये देह, ये वस्त्रों की बात नहीं, लेकिन देह रूपी वस्त्र से बाबा ने कैसे न्यारा कर दिया, और कहां वो बताया कि गोपियों के वस्त्र चुराए, कितनी बड़ी ग्लानी। कहां श्री कृष्ण ने मक्खन चोरी किया, कितनी बड़ी ग्लानी, और बाबा कहते मैं तो सारी दुनिया का मक्खन तुमको देता हूं, तो कहां वो ग्लानी जो कृष्ण की थी वो बाबा के ऊपर लगाई, ब्रह्मा बाबा की वो ग्लानी की, कृष्ण को कभी ग्लानी नहीं करेंगे, होनी हो भी नहीं सकती है। तो संगम युग पर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और कृष्ण, श्री कृष्ण, इन तीनों की बायोग्राफीज को मिला दिया है। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उसने चौथ का चंद्रमा देखा, ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। तो ग्लानी की बातें ब्रह्मा बाबा के सामने आई थी, बहुत आई थी, लेकिन बाबा कैसे न्यारे बने। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वाट वेंदे बांबण फाथो, जिस सिंधी में कहते हैं वाट वेंदे बांबण फाथो, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। लौकिक में ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण था, कृपलानी जाति ये ब्राह्मण जाति है, सिंधियों में बहुत ऊंची जाति थी। बाबा ने कभी शराब सिगरेट ये नॉन वेज को छुआ तक नहीं था, पक्के वैष्णव थे, कट्टर वल्भाचारी थे, श्रीनाथ के भक्त थे, श्रीनाथ द्वारे में जाते थे बाबा, इतने स्ट्रांग थे अपने असूलों में। तो जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो क्या क्या ग्लानी बाबा को सुननी पड़ी, लेकिन रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और गालियां मिलनी लगी बाबा को, लेकिन बाबा बिल्कुल अचल अडोल थे, क्योंकि निश्चय बुद्धि पक्के थे, और जब निश्चय बुद्धि पक्के हैं तो फिर हिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ऐसे ब्रह्मा बाप समान हमें भी बनना है, ऐसे नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो स्थिति हिल गई, माया हिलाएगी, यहाँ कान पकड़ेगी। फिर तीसरा, माया क्या करती है, थप्पड़ मारती है। तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या होता है, जब किसी को थप्पड़ मारते हैं ना तो मुंह फिर जाता है, साइड में हो जाता है, मुंह फिर गया ऐसे। तो माया थप्पड़ मारती है माना मुंह फिर गया, यानी दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब दूसरों को देखना शुरू किया तो स्थिति डामाडोल हो जाएगी, इसी से या तो हीनता की स्थिति आएगी भावना, या तो अभिमान आएगा, मैं इनसे अच्छा हूँ या मैं इनसे कम हूँ। तो बाबा कहते किसी को मत देखो, हर एक का अपना अपना पार्ट है, अब अपने आप को देखो। अगर देखना भी है तो ये देखो कि कल से मैं आगे, आज अच्छा हूँ, आज अच्छा बनना है कल से। लेकिन फिर माया चोटी पकड़ती है, चोटी कैसे पकड़ती है, अच्छा हूं कल से माना पीछे मुड़ के देखा और फिर अभी आगे मैं हूं अच्छा हूं, तो कई बार उसका अभिमान भी आ जाता है ना। कई भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं, बहन जी मैं बहुत शराब पीता था, मैं सिगरेट पीता था, बहुत शराबी कबाबी, बहुत मायावी था, बहुत गुस्से वाला था, बहन जी अभी तो मैं इतना बदल गया हूँ, इतना बदल गया हूँ, इतना बदल गया हूँ, उसका अभिमान आ जाता है, मैं तो बहुत बदल गया हूँ। तो बाबा कहते अभी पीछे मुड़ के मत देखो, बदल गया हूँ बदल गया हूँ, और अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके उस मंजिल तक पहुंचना है, पीछे ही मुड़ के देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मत सोचो मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा होना है। जैसे एक होशियार स्टूडेंट होता है, अगर उसको 90% भी मार्क्स मिलते हैं ना तो भी वो सोचेगा मेरा 10% कहाँ चला गया, मुझे 100% लेना है। पर जो विद्यार्थी डल होता है, कमजोर होता है, हमेशा फेल ही होता रहता है, उसको अगर 33% मार्क्स मिल गया ना, पासिंग मार्क्स, तो भी खुश हो जाएगा, मैं तो पास तो हो गया, क्योंकि वो जीरो से देखता है। और अच्छा होशियार स्टूडेंट 100 से देखता है। तो मुझे जीरो से देखना है या 100 से देखना है, किससे देखना है, किससे भेंट करनी है, अपने 100 मार्क्स से भेंट करनी है। और 100 मार्क्स से भेंट करने के लिए वो स्वरूप अभी अनुभव करना है। जैसे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो वो क्या सोचेगा, सुर मैं हूं ही फर्स्ट, मैं हूं ही फर्स्ट, ये नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं पता नहीं, मैं हूं ही, तभी तो फर्स्ट आएगा। इसको कहते हैं बाप समान स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भले हम कहते हैं कि अगर पुरुषार्थ में हम कंपटीशन चाहते, कल से आज मैं अच्छा हूं ये जरूर सोचना है, पर कल से आज अच्छा हूं का मतलब ये नहीं है कि कल को बैठ के याद करना है, कल को याद नहीं करना है, आने वाले कल को याद करना है, बीते हुए कल को याद नहीं करना है। तो माया चोटी पकड़ती है ना, पीछे मुड़ के दिखाती है तुम बहुत अच्छे, तुम क्या थे देखो तो अभिमान आ जाएगा। या कई बार और ही निराशा आ जाती है, कई समझते मैं ज्ञान में नहीं था तो माया क्या होती है ये पता ही नहीं था, तो कोई परीक्षा ही नहीं थी। अभी तो कितनी परीक्षाएं आ रही है, हम पहले ज्ञान में नहीं थे तो और अच्छे थे, कई तो ऐसे भी समझते हैं। ये माया ने चोटी पकड़ ली, माया ने चोटी पकड़ के पीछे की तरफ खींच लिया। ये परीक्षाएं जो आ भी रही है, ये हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते हम? नहीं तो धर्मराजपुरी में चुकतू करने पड़ेंगे, वहां चुकतू करने की बजाय यहाँ चुकतू करना अच्छा है, सजाई न खाए यहीं चुकतू कर लें। फिर बाबा कहते माया क्या करती है, घूसा मारती है, गिरा देती है। तो गिरा कैसे देती है, कोई न कोई विकार के वश हो जाते हैं, कोई न कोई विकार के वश हुए, काला मुंह किया तो जैसे माया ने सारी आत्मा की शक्ति छीन ली और गिर गए। और ऐसे गिरे जो एकदम बेहोश हो जाते, जो ज्ञान अगर सुनाओ भी ना उनको कुछ पले नहीं पड़ेगा, और कुछ पले नहीं पड़ेगा बिल्कुल जाके दुनियावी बन जाएंगे, और दुनियावी जाके बन गए तो पहले से भी बदतर बन जाएंगे। ज्ञान में नहीं थे उस समय जो स्थिति थी उससे भी बदतर बन सकते हैं ज्ञान छोड़ने के बाद। आप सोच सकते क्या स्थिति बनेगी, क्यों? क्योंकि 100 गुना सजा हो जाती है, 100 गुना सजा। अज्ञान काल में है तो फिर भी 1 गुना सजा, और ज्ञान में आने के बाद, समझ मिलने के बाद, माया को पहचानने के बाद, लक्ष्य मिलने के बाद, क्या थे, क्या है, क्या होना है, क्या रहना है, ये सब कुछ पता होने के बाद फिर भी अगर माया के वश हुए तो बाबा कहते 100 गुना सजा मिलेगी। तो कई लोग बहुत घबराते हैं, हाँ ठीक है जैसे वैसे ही ठीक है, हा? लेकिन हिम्मत थोड़ी हारनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये भी तो बाबा कहते हैं। कई बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि बाबा की मदद मिल भी रही है, क्यों? क्योंकि वो समझते मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी बाबा की मदद नहीं मिल रही है। कई बच्चे उल्हेना देते हैं बाबा को, कंप्लेंट्स करते हैं, फरियाद करते हैं, वो तो फिर फरियाद करने वाले योगी बन जाते हैं। जब देखो बाबा के प्रति फरियाद ही फरियाद है, कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। भक्ति में तो बहुत कंप्लेंट्स की, पर फरियाद कैसे करते, बाबा आप हमको मदद नहीं करते, बाबा आप हमको मदद नहीं करते। बाबा की मदद मिल रही है ये पता भी नहीं चलता है, और हम समझते बाबा हमको मदद नहीं करते। हाँ वो एक कहानी सुनाते हैं ना कि भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा, भगवान मदद भी किसके द्वारा करेगा ना, कोई चमत्कार थोड़ी दिखाएगा भगवान मदद करेगा। एक मिसाल बताते हैं कि एक जगह बाढ़ आ गई, बाढ़ आ रही थी, ऐलान हुआ कि यहाँ पर बाढ़ आई है, बांध टूट गया है, यहाँ खाली करो खाली करो। तो सारे खाली करके भागे, लेकिन एक मकान में एक व्यक्ति था, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे मदद करेगा। तो पड़ोसी जा रहा था, पड़ोसी ने उसको कहा चलो 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 यहाँ पानी आ रहा है, बाढ़ आएगी, चलो हमारे सरकार, नहीं भगवान मुझे मदद करेगा। अब बैठ गया, और जैसे ही पानी आया तो उसके घर में घुस गया, तो भाग करके ऊपर चला गया छत पर। तो जैसे ही देखा पानी आ गया तो नाव आई, एक व्यक्ति नाव में आया, चलो नाव में बैठ जाओ, चलो चलो पानी आ गया है, चलो मैं हम आपको पार करेंगे। तो कहा नहीं नहीं भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। तो और पानी ऊपर आ गया तो छत पर जाके खड़ा हो गया, यहाँ तक पानी था तो हेलीकॉप्टर आया, भाई रस्सी गिरा रहा हूँ तुम चढ़ जाओ चढ़ जाओ, नहीं भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। और आखिर पहुंच गया भगवान के पास, पहुंच ही गया। तो भगवान को कहता है भगवान तुमने मुझे मदद नहीं की। भगवान ने कहा कैसे नहीं की, आपको तो मैं बहुत मदद कर रहा था लेकिन तुमने समझा नहीं। वो जिस व्यक्ति ने आपको कहा चलो मेरे साथ, ये मैंने ही तो उसको भेजा आपके पास, वो नाविक जिसने तुमको कहा नाव में बैठो चलो, उसको मैंने ही तो भेजा था, वो हेलीकॉप्टर वाले को मैंने ही तो भेजा था कि जाओ उसको मदद करो, पर आपने मेरी मदद समझी नहीं, अब उसमें भगवान भी क्या करेगा। इस पर बहुत से मिसाल बताते हैं कैसे हम भगवान को उलहने देते हैं। हाँ, एक और मिसाल बताते हैं, बहुत सुंदर मिसाल है कि एक व्यक्ति था, बहुत कष्ट में था, और वो उसने अपना पिछला बैकग्राउंड देखा, पीछे देखा कैसे भगवान ने मुझे मदद की, लेकिन एक समय था जब बहुत कष्ट था, तो उसको लगा कि भगवान ने मुझे मदद नहीं की। कैसे नहीं की? क्योंकि हर वक्त वो देखता था चार पैर, तो भगवान मेरे साथ चल रहा है, मेरे दो पैर दो भगवान के पैर, लेकिन जब बहुत कष्ट का समय था तो दो ही पैर दिखाई दिए, भगवान के पैर तो दिखाई नहीं दिए, तो फिर भी भगवान को लेना दे रहा है, हे भगवान तुमने मुझे मदद नहीं की। तो भगवान ने कहा अरे जिस समय तुमको ज्यादा कष्ट था उस समय मैंने तुमको उठा लिया था, वो दो कदम मेरे हैं तुम्हारे नहीं है, और उसने क्या समझा ये मेरे ही है। तो बाबा की हर वक्त मदद है, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी होती, और कुछ नहीं, बाबा की 100 गुना मदद है। परंतु अगर हम ही ये महसूस कर रहे हैं मुश्किल है मुश्किल है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा पता नहीं पता नहीं, तो पता कट सकता है, क्योंकि बाबा की मदद के पात्र ही कहाँ रहेंगे, हिम्मत भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हमें ये सोचना है बस उस संपूर्ण स्थिति को याद करो, मेरी वही संपूर्ण स्थिति है, मुझे जिसको बाबा कहते एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति, घर जाना है नई दुनिया में आना है, घर जाना है नई दुनिया में आना है, सब कुछ करते हुए भी न्यारा बनना है, कछुए समान बनना है, मेरी वही स्थिति है, बस ये स्थिति को अपनाते जाओ और आत्मा सहज योगी बनती जाएगी, और अपने ओरिजिनल जो जो गुण है जो शक्तियां हैं जो स्थिति है जो स्वरूप है वो सहज रूप से अनुभव होता जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया, स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की